वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में आप सब जानते हैं संक्षेप में परीक्षित महाराज को शाप प्राप्त हुआ था 7 दिन के बाद में सांप के द्वारा दंश होकर मरने का और उन्होंने गंगा तट पर राज्य त्याग करके सुखदेव महाराज की शरण ग्रहण कर ली थी। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र हैं और वो वहाँ पर आते हैं और राजा संन्यस्त होकर विरक्त होकर वहाँ पर उनकी शरण ग्रहण करते हैं और उनको प्रश्न पूछते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा है उसका कर्तव्य क्या है। आप सबको ये प्रश्न मन में है, होना चाहिए, नहीं तो भी होना चाहिए क्योंकि सबके जीवन में मृत्यु सामने खड़ी है, कब आएगी किसी को पता नहीं है। हाँ, इसलिए हम लोग जी रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि कल भी जिएंगे या शाम को भी जिएंगे या परसों भी जिएंगे या मुंबई पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको शुभकामना देता हूँ कि आप सब बॉम्बे पहुंचेंगे लेकिन शास्त्र कहता है ये गारंटी नहीं है तो ये उनको शाप प्राप्त हुआ था इसलिए उन्होंने प्रश्न पूछा, कम से कम उनको ये नॉलेज था कि 7 दिन के बाद मरेंगे। हमको तो पता नहीं कि 7 क्षण के बाद भी जिएंगे कि नहीं, वो गारंटी नहीं। तो ये प्रश्न जो उन्होंने पूछा है कि जो व्यक्ति मृत्यु के सामने खड़ा है उसका कर्तव्य क्या है, ये प्रश्न हम सभी के लिए उन्होंने पूछा है। उस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव महाराज ने 18,000 श्लोक वाला श्रीमद् भागवतम सुनाया। श्रीमद् भागवतम इज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ परीक्षित महाराज, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन हु इज अबाउट टू डाई। वी आर ऑल अबाउट टू डाई बाय द वे, यू डोंट नो व्हेन। तो इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बहुत सारे भक्तों का चरित्र सुनाया, प्रहलाद चरित्र सुनाया, ध्रुव चरित्र सुनाया, कुंती चरित्र, उनकी प्रार्थनाएं, पांडवों का चरित्र, थोड़ी बहुत रामलीला, भीष्म चरित्र और परशुराम चरित्र, बहुत सारा चरित्र सुनाया, प्रहलाद चरित्र, हिरण्यकश्यप का वध, हिरण्याक्ष का वध, वराह अवतार, वामन अवतार, बलि महाराज चरित्र। श्रीमद् भागवतम एक बहुत सुंदर शास्त्र है, अमलम पुराणम, उसमें केवल शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है। उसमें कर्मकांड, ज्ञानकांड, योगकांड, अष्टांग का योग, सब कुछ कुछ भी सब फार फेंक दिया उसको। जो शुद्ध भक्ति से संबंधित नहीं है ऐसे सारे विषयों को श्रीमद् भागवत ने बाहर कर दिया है और केवल जो भगवान की शुद्ध भक्ति के उपलक्ष्य में संबंधित है केवल ऐसे ही वस्तु का वर्णन किया उसमें। तो उसमें दशम स्कंद में वो सब भक्तों का चरित्र वर्णन करने के बाद में कृष्ण का चरित्र आरंभ करते हैं, जो श्रीमद् भागवत के मुख कमल जैसा, मतलब भगवान की मुख कमल जैसा उसका वर्णन किया है। दशम स्कंद जो है इट इज लाइक कृष्णा लोटस फेस। तो उसमें भगवान के जन्म, बाल लीला, पगवन लीला, कुमार लीला, यौवन लीला, सब लीला का वर्णन है। भगवान वहाँ पर 12 साल तक रहे, मतलब कुमार अवस्था तक वहाँ रहे, पगवंड अवस्था तक, और अपने ब्रज लीला के अंदर सर्वोच्च प्रेम उन्होंने प्रकट किया रास लीला के माध्यम से। रास लीला ये भगवान ने की हुई ब्रज लीला के अंदर सर्वोच्च लीला है, जिसमें भगवान ने अपने भक्तों के प्रति सबसे श्रेष्ठ आनंद का दान अपने भक्तों को दिया। तो सर्वोच्च आनंद कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के संबंध में जीव को प्राप्त हो सकता है, वो रास लीला के माध्यम से भगवान ने अपने भक्तों को यानी गोपियों को दिया। उसके बाद वो ब्रज से अंतर्धान होकर मथुरा और हस्तिनापुर और द्वारका चले गए। उसके बाद में उन्होंने विप्रलंब यानी विरह का अनुभव दिया उनको, जो मिलन के अनुभव से भी बहुत अधिक उत्कट होता है। प्रभु जी आप जप नहीं करना, जब कथा सुन रहे हैं तो केवल कथा सुनना, जब जप कर रहे हैं तो केवल जप करना। तो ये रास लीला जो है ये गोपियों के लिए भगवान ने चुनकर उनको अलग निकालकर ये सर्वश्रेष्ठ आनंद का अनुभव दिया उनको। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं। संत लोग कहते हैं कि भगवान को एक रोग है। अरे भगवान को भी रोग होता है क्या? भगवान तो दिव्य शरीर वाले हैं, लेकिन उनको ऐसा रोग है जो हमारे हित में है। कैसा रोग है? वो सब पर कृपा करते रहते हैं, उनको कृपा करने का रोग है, वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो वो सोचते हैं अरे कृष्ण लीला में आया मैं मथुरा में वृंदावन में और केवल गोपियों को यह आनंद दिया, क्यों ना ये आनंद सभी जीवों को दिया जाए। पात्रे अपात्रे ना देखिला, ना देखिला स्थाने अस्थान। ये पात्र अपात्र, योग्य है योग्य नहीं है, ये पापी है पुण्यवान है, अच्छा है बुरा है, ये धर्मशील है ये अधर्म वाला है, ऐसा भेदभाव क्यों करना है? क्यों ना सभी जीवों को इस दिव्य आनंद को लुटाया जाए। इसलिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले प्रवचन में गोद्रोम द्वीप में बताया आपको, कि भगवान ने सोचा कि मैं अभी भक्त बनकर आऊंगा, अपने पद को छोड़कर। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि मुझे ब्रह्मा पद नहीं चाहिए। भाई देखिए ब्रह्मा ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ब्रह्मा ये पोस्ट का नाम है। जैसे होता है ना सीईओ, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वो पोस्ट का नाम होता है। कोई व्यक्ति उस पोस्ट को लेता है फिर वो सीईओ बनता है, लेकिन वो इट्स द नेम ऑफ द पोस्ट। तो ब्रह्मा जी का पद नहीं चाहिए, मुझे आपका न्यून भक्त बनना है। भगवान भी अपने पद का त्याग करते हैं, भगवत्ता छोड़कर भक्त बनकर आते हैं और सोचते हैं कि ये जो मैंने कुछ गिने चुने भक्तों को दिया था आनंद, वो मैं अभी इस अवतार में सभी लोगों को बांटूंगा। जो बहुत प्राइवेट है, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत सीक्रेट है, बहुत गुह्य है, सबको नहीं मिलता है, ऐसा आनंद मैं गोदाम से निकालकर सब जनता में खुलेआम बांटूंगा किसी भेदभाव के बिना। तो उन्होंने जो आनंद था गौलोक वृंदावन का, रास का जो आनंद था, वो हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन में पैक कर लिया, एनवेलप कर लिया उसको, और वो लेकर वो स्वयं किसी और को ना भेजते हुए, ऐसा नहीं कहा नारद मुनि आप तो सब जगह घूमते रहते हो, आपको तो आदत है ट्रैवलिंग करने की, आप थकते नहीं हो, नारायण नारायण करते वीणा बजाते हुए सब लोक में यात्रा करते रहते हो, आपको तो हैबिट है ट्रैवल करने की, तो आप ही हमारा पैकेट जो है वो पहुंचा गया, ऐसा नहीं बताया। जब कोई बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती है तो व्यक्ति वो खुद करता है। जब घर में शादी होती है ना तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कुछ सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट लोगों को देखने का काम जो है यजमान अपने पास रखता है कि सबको तुम देखना, इसको मैं देखूंगा, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हम खुद करना चाहते हैं। इसलिए इतना महत्वपूर्ण कार्य जो गौलोक वृंदावन का प्रेम का सार, प्रेम का धन जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन के रूप में बांटना है, बोला मैं खुद जाऊंगा, भगवान का पद छोड़ दूंगा, मैं अपना भक्त बनकर कान में हाथ रखूंगा, जब कोई बोलेंगे तो भगवान, तो मैं बोलूंगा विष्णु विष्णु विष्णु, ऐसे मत बोलो, मैं भगवान नहीं हूं, भगवान का भक्त हूं। और फिर सब लोगों को, जो पापी है पापी नहीं है, जो अच्छे हैं बुरे हैं, हाँ छोटे छोटे भक्त बने बहुत सारे भक्त बने बहुत एडवांस्ड हैं प्रगत हैं, सब लोगों को बांटूंगा बिना किसी भेदभाव के। और वो जो महामंत्र का संकीर्तन है वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगह पर आरंभ किया। इस जगह को इसलिए रासस्थली भी कहते हैं, इसका नाम है श्रीवास आंगन, क्योंकि ये श्रीवास पंडित नारद मुनि का घर है। नारद मुनि ने कलयुग में श्रीवास पंडित के रूप में उतार लिया। एक बात बताना आपको बहुत जरूरी है इस बात पर, इस क्षण में, कि चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया, भक्त अवतार, छन्न अवतार, छुपा हुआ अवतार जब लिया, तो सारी देवी देवताएं, सारे जितने भगवान ने अवतार लिए हैं उनके जो जो भक्त हैं, जैसे मत्स्यावतार के कोई भक्त हैं, वराह अवतार के भी भक्त हैं, कूर्म अवतार के भी भक्त हैं, वामन देव के भी भक्त हैं, कृष्ण लीला के भी भक्त हैं, नरसिंह भगवान के भक्त हैं, ये जितने भी अवतार हुए भगवान के, इनके अपने अपने भक्तों की मंडली है। वो केवल जब वो भगवान आते हैं तो वो मंडली भी प्रकट हो जाती है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया तो सारे भगवान के जितने भी अवतार थे सभी लोगों के भक्तों ने अवतार लिया साथ में, क्योंकि ये औदार्य लीला है। जैसे कि नरसिंह भगवान है, उनके भक्त प्रहलाद महाराज है, तो प्रहलाद जी भी वासुदेव दत्त बनकर उन्होंने अवतार लिया। नारद मुनि ने श्रीवास पंडित बनकर अवतार लिया। हनुमान जी, राम भक्त हनुमान जी, मुरारी गुप्ता बनकर आए। उनका घर यहाँ पर बहुत पास में है, प्रांदर है, जाने में थोड़ी दिक्कत है। मुरारी गुप्ता हनुमान जी डॉक्टर बनकर, वैद्य बनकर उन्होंने अवतार लिया। फिर महाविष्णु आए स्वयं, तो पूरे ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं वो भी छोड़कर आए, बोले मुझे जाना है, महाप्रभु जी लीला कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा यहाँ पर बैठ के, योग निद्रा में बैठता हूँ, ब्रह्मांडों का निर्माण करता हूँ, थोड़ा CL ले लूँगा अभी, हाँ मुझे जाना है। कभी कभी होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ना, सब लोग अपना काम छोड़ के जाते हैं भाग के वहाँ पर, ये छोड़ना नहीं अपने इवेंट। उस तरह से महाविष्णु आए अद्वैत आचार्य बनकर। राधा रानी स्वयं गदाधर पंडित बनकर आई, मतलब स्त्री लेकिन पुरुष का अवतार लेकर आए। और कौन बचा, नित्यानंद प्रभु, भगवान जी के बड़े भाई बलराम जी नित्यानंद प्रभु बनकर आए। कंस भी आया चांद काजी बनकर, और जरासंध आया नवाब हुसैन शाह बनकर। सबने अपना, राक्षसों ने भी अपना अपना पोजीशन ले लिया। हाँ एक बात बताना, वहां भूल गया मैं आपको, चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ ना, तो पार्वती सरस्वती लक्ष्मी और सारे अनेक अनेक देवता जो है वो ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर भीड़ में घुस गए दर्शन करने के लिए भगवान के बाल रूप का। अपने अपने लोकों में से, देवता लोकों में से अच्छी अच्छी वस्तु भेंट लेकर आए। यहाँ ब्राह्मण ब्राह्मणी का बंगाली अवतार लिया उन्होंने, और सबके बीच में जाके भगवान को भेंट दिया, उनको आलिंगन दिया, उनको आशीर्वचन दिया, और दर्शन करके चले गए सब लोग। सब लोग महाप्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल रहते। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के समय सभी भक्तों ने, सभी अवतारों के भक्तों ने जन्म लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर भगवान ने श्रीवास आंगन यानी कि श्रीवास पंडित का जो घर है, यहाँ के मालिक श्रीवास ठाकुर हैं, उनकी पत्नी का नाम मालिनी है। ये मालिनी और अद्वैत आचार्य की पत्नी सीता देवी बड़े अच्छे दोस्त, एक मित्र थे अपने, मतलब बहुत मैत्री थी उनकी दूसरों के अंदर। तो ये श्रीवास आंगन है, इसको रासस्थली के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो संकीर्तन में हमको हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने में आनंद प्राप्त होता है, कुछ समय के लिए क्यों ना हो, जितना समय कर रहे हैं उतने समय तक रास का आनंद इसमें प्राप्त होता है। इसलिए रासस्थली यानी कि बंसी भट्ट में भगवान ने जब रास पूर्णिमा के दिन रात को बंसुरी बजाई थी और सभी गोपियों को बुलाया था, आकर्षित करके मोहित कर दिया था और रात भर नृत्य किया था, वो जगह और ये जगह अलग नहीं है। वहां पर भगवान ने रास का आरंभ किया और गोपियों को ब्रह्मा जी के एक रात तक, एक रात पर समेट कर उतनी समय तक एक ही रात में आनंद दिया। वो जो आरंभ किया वही आरंभ चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का इस जगह पर किया। अंतर एक ही है कि वो एक्सक्लूसिव था, कुछ ही लोगों के लिए था, ये आम जनता के लिए ओपन है, इसलिए औदार्य है। वहां माधुर्य है, यहां पर औदार्य है, यहां भगवान की उदारता दिखाई पड़ रही है। भगवान ने सभी जनता के लिए दिव्य आनंद जो है बांट लिया। इसलिए कभी भी हरिनाम संकीर्तन के करते हुए कभी भी संकोच नहीं करना, क्योंकि अयोग्य होते हुए भी भगवान ने हमको ये लाइसेंस दे दिया है कि आप इसको अनुभव कर सकते हो। और हमेशा लोग उत्सुक रहते हैं, जब बंद दरवाजे में कुछ काम होता है तो सब लोग उत्सुक रहते हैं, अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, हमें क्यों नहीं प्रवेश मिल रहा है, ऐसा होता है ना मन में। खुला दरवाजा हुआ तो हम लोग कुछ टेंशन नहीं रहते, कुछ एंग्जाइटी रहती नहीं, लेकिन दरवाजा बंद है अंदर कुछ हो रहा है तो सब लोग चर्चा करते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो दिव्य आनंद है खुलेआम बांटा जा रहा है। तो ये जगह आप बार बार दंडवत करना है इसको, क्योंकि रासस्थली जो बंसी भट्ट है वृंदावन का, उससे भी करोड़ों गुना अधिक दयालु जगह ये है। क्योंकि यहाँ पर हम और आप, जैसे कि बहुत बड़ी कीमती वस्तु है, कुछ लोग खरीद सकते हैं, वो ले रहे हैं, हमारा क्या संबंध है उसके साथ में, तो वी कांट डू एनीथिंग, कोई कनेक्शन नहीं हमारा, हम वी आर नॉट एलिजिबल टू बाय। लेकिन अगर वो वस्तु हमारे लिए अवेलेबल है, आप बोलेंगे उस जगह जाओ वहां मिलेगी आपको ये वस्तु, यहाँ पर खाली इन लोगों को परमिशन है, आप यहाँ आएंगे तो मिल जाएगा। वैसे बंसीवर जाएंगे तो आपको बाहर कर देंगे, क्योंकि शिवजी महाराज भी वहाँ गए थे, उनको कहा कि यहाँ पर केवल सब लेडीज हैं, एक ही आदमी यहाँ पर कृष्ण, तो बोले क्या करना होगा, बोले पहले लेडीज बनना पड़ेगा। स्त्री बनना होगा। तो गए मानसरोवर में स्नान किया, गोपी बनकर आए, तब उनको प्रवेश मिला। फिर लक्ष्मी जी आई, बोलते मैं लक्ष्मी हूँ, वैकुंठ की भगवान की रानी हूँ। बोले पहले गाय का गोबर निकालना होगा, गाय को धोना होगा, उसको दूध निकालना होगा, मंथन करना होगा, आंगन साफ करना होगा, उसमें गोबर लिपना होगा। हाँ, ये सब काम करके जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे ना तो आपको एंट्री मिलेगी। लक्ष्मी ने कहा तो मैं लक्ष्मी हूँ, वैकुंठनाथ की पत्नी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती, मेरे पास हजारों नौकरान सब काम करते रहते। बोला ऐसा है क्या, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसे सभी देवी देवता आकाश में आ गए, उनको भी एंट्री नहीं मिली। दूर दूर से उस म्यूजिक को वो असिस्टेंस देने लगे, मतलब कुछ वाद्य गीत बज रहा है रास्ते में अंदर, उसमें कुछ सहायता कर रहे ऊपर से, इतना ही उनका एंट्री है बस। तो वहां पर एकदम प्राइवेट देवताओं को भी, शिवजी महाराज को भी एंट्री नहीं, और यहां पर हमारे जैसे लोग भी आकर भाग ले सकते। तो भगवान की कृपा को समझना जरा मुश्किल है, मैं कितना भी समझाऊंगा तो मुझे भी समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, इतनी बड़ी कृपा भगवान कैसे बरसा सकते हैं, केवल वही कर सकते हैं, क्योंकि उनको कृपा करने का रोग है। वो चाहते हैं कि सब जीवों पर कृपा करें, क्योंकि वो सब जीवों पर अपने बालक की तरह प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब उनके बालक हैं। वी आर ऑल इज चिल्ड्रेन, हमने उनको छोड़कर यहाँ पर जन्म लिया है। हाँ, इस गंदे मरने वाले, रोगी होने वाले, बूढ़े होने वाले शरीर पर बहुत प्रेम करते हैं हम लोग, इससे भोग देना चाहते हैं, इस पर जीना चाहते हैं, फिर जन्म मृत्यु का दुख भुगतना पड़ता है, ऐसे शरीर में हम जी रहे हैं, उनको छोड़कर फिर भी वो हमको श्रीवास आनंद में लेकर आए हैं। देखो आप अगर टॉस करेंगे ना टॉस, तो क्या चांस है हमारा मुंबई से यहाँ पर आने का, वेरी रेयर, मुश्किल लगता है बहुत। फिर भी हम लोग, आपको यकीन होगा या न होगा, हम श्रीवास आंगन में बैठे हैं, वी आर सिटिंग एट श्रीवास आंगन, ट्राइंग टू ग्रास्प द एसेंस ऑफ कृष्णा मर्सी, कृष्ण भगवान की कृपा का जो सार है उसको ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस जगह पर जो दर्शन है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं राधा और कृष्ण खड़े हैं और चैतन्य महाप्रभु खड़े, राधा माधव, राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु बीच में। वो बताऊंगा आपको लीला क्या है, लेकिन बीच में महाप्रकाश लीला का दर्शन है। श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला के भाव में बैठे हैं, बताऊंगा क्या है उसका मतलब। और उसके आगे जो है उसमें भगवान के भक्त हैं, चैतन्य सब लोग खड़े हैं, और एक टूटा हुआ मृदंग है उसके बीच में, देखा आपने, उसको कहते हैं खोल। एक होता है मृदंग, एक होता है ढोलक, एक होता है खोल, यहाँ पर खोल होता है बंगाल में, खोल बजाते हैं। तो खोल भंग, तो भंग किया गया है, और डांगा, डांगा मतलब जगह, हम बोलते हैं ना कि अहमदपुर, बदलापुर, वैसे डांगा मतलब जगह का नाम होता है। तो खोल भंग डांगा, जहां पर खोल को तोड़ दिया गया था, उसकी भी कहानी बताऊंगा। तो यहां पर भगवान ने श्रीवास के घर पे आकर दिन में कीर्तन शुरू कर दिया, और सब लोग यहां पर कीर्तन के रस में आनंद मग्न होकर, भूख प्यास निद्रा सब खोकर यहां पर नित्य होकर नित्य करने लगे, दिव्य आनंद का अनुभव करने लगे। कुछ साल के बाद में चैतन्य महाप्रभु ने बताया, दिन में ही क्यों करना है, रात में क्यों नहीं करना है? अरे रात में तमोगुण के प्रभाव से सब लोग निद्रा में व्यस्त हो जाते हैं, इतना समय गंवाते हैं सोकर, क्यों सोना है, नहीं सोना है, आज से हम रात को भी कीर्तन करेंगे। अगर हमने आपको ये बात बताई आज बैठकर यहाँ पर, आज से चार दिन तक रात को सोना नहीं है, सेवा संगन में आना है और कीर्तन करना है, तो कितने लोग हाथ ऊपर करेंगे? बहुत कम हाथ, वो भी ऐसे बहुत मुश्किल से, ऐसे धीरे धीरे ऊपर ही नहीं आ रहे। मैंने ऊपर क्या किया हाथ, मैंने नहीं किया। मुझे रात को सोना है। आपकी खाली देख रहा था आप में से कितने तैयार है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने हरी बोल करके हाथ ऊपर किया, बोले यस, आज के बाद हम रात में तमोगुण में नहीं सोएंगे, तमोगुण के प्रभाव में नहीं प्रभावित होंगे, रात भर कीर्तन। उसी दिन से संध्या से कीर्तन शुरू हुआ, लेकिन भगवान ने कहा रात का कीर्तन जो है बंद दरवाजे में होगा, केवल जो भौतिक इच्छाओं से पूर्णता मुक्त हो गए हैं, जिन्हें दुनिया की भोग की कोई लालसा नहीं बची है, जो हृदय में शुद्ध होकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्ति इसके अंदर आएंगे। और थोड़ी बहुत भी जिसको तपस्या का गर्व है, थोड़ी बहुत भी जिसको ज्ञान का गर्व है, थोड़ी बहुत भी जिसको पद के, अच्छे पद का, अच्छे मठाधीश बनने का कोई इच्छा है, भले वो सो कॉल्ड तथा कथित भौतिक मतलब स्पिरिचुअल इच्छा क्यों ना हो, मुझे गुरु बनना है, ये भी एक बढ़िया इच्छा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल इच्छा होने के बावजूद भी एक भौतिक इच्छा है। भक्त कोई किसी की किसी इच्छा की अपेक्षा नहीं करता है, उसे गुरु भी नहीं बनना है, उसको केवल दास 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 अनुदास बनना है। वो केवल अपने आप की एक ही पहचान रखता है, जी मेरे स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। और कोई बाकी जो गुरु गुरु का जो पद होता है वो जानते हैं कि ऐसा भूल भुलैया है, समय के साथ में समाप्त होने वाला है। समय के साथ में समाप्त न होने वाली एक ही उपाधि है, वो है कृष्णदास। इस पद से आपको कोई पदच्युत नहीं कर सकता है, कोई रिटायर नहीं कर सकता है, हाँ कोई VRS नहीं दे सकता है आपको। ये आपका पोजिशन परमानेंट है, यहाँ भी और गोलोक में भी। जहाँ जाएंगे कुत्ता बनेंगे बिल्ली बनेंगे, लेकिन जीवेर स्वरूप हो नित्यर कृष्णदास बने रहेंगे। तो जो लोग शुद्ध हो चुके हैं उनको यहाँ प्रवेश मिलेगा। इस तरह दरवाजा बंद करके रात भर ऐसा कीर्तन आरंभ हुआ जिसमें अनेक प्रकार के दिव्य विकार उनके शरीर में प्रकट होने लगे, दिव्य भावनाएं, आंखों में अश्रु, कंपन, हाँ गला गदगद होना, बेहोश हो जाना, हवा में कूदना, गोल गोल होके गिर जाना, फिर बेहोश होना, फिर उठना, इस प्रकार के दिव्य चमत्कारिक अनुभव यहाँ होने लगे। तो मैंने कहा ना, जब दरवाजे बंद हुए तो कई ब्राह्मण थे यहाँ पर, उनको भी अंदर आने की इच्छा थी। वो दरवाजा खटखटा रहे, हमें अंदर आने दो, तो दरवाजा नहीं खुल रहा है। उनके अहंकार को ठेस पहुँचती है, बोले नहीं, ये लोग अंदर चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई गिरने की आवाज़ आ रही है, कोई ऐसे पागलों की तरह चीख रहे हैं, मतलब यहाँ पर कुछ शराब विराब पी रहे लोग, बहुत सारी औरतों को भी अंदर लिया होगा, व्यभिचार भी कर रहे होंगे, ऐसा उनके मन में द्वेष की वजह से विचार आने लगा। और उन्होंने बाहर सब खबर फैला दी कि दिन में तो बहुत भक्ति दिखाते हैं, रात को तो औरतों को लेकर शराब पीकर बहुत भोग करते हैं, और हमको अंदर आने देते, हम तो ब्राह्मण हैं इसलिए हमको अंदर आने देते नहीं है, तो हम तो शराब पीते नहीं हैं। ऐसे द्वेष की बातें होने लगी, और उन्होंने द्वेष के कारण जाकर काजी को इन्फॉर्म किया। चांद काजी जो कंस का अवतार है, जो यहाँ का मालिक था, सब जगह मुसलमानों का राज्य था, उसको जाकर उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। कहीं भी शास्त्र में ऐसा लिखा नहीं है कि रात को दरवाजा बंद करके पागलों की तरह नाचना चाहिए, ऐसे कहीं भी लिखा नहीं। ये लोग हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, धर्म को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, इनको रोको, आप यहाँ के राजा हो, आपका कर्तव्य है कि आम जनता को बहकने से बचाना। काजी कहता है अच्छी बात है, यहाँ पर आज तक इसकी हिम्मत नहीं हुई कीर्तन करने की, हमारे राज में केवल अल्लाह का नाम होता है, अजान देते हैं यहाँ पर। यहाँ तो महाप्रभु की प्रेरणा से जो सहमे सहमे लोग थे, जो करते नहीं थे, वो उनकी प्रेरणा से और हिम्मत से अपने घरों घरों में कीर्तन करने लगे, सब घरों में से कीर्तन की आवाज गूंजने लगी। तो काजी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बताया कि ये यहाँ पर नहीं हो रहा है, सब जगह घर पे हो रहा है आजकल, आप लोग क्या कर रहे हो, आपको करना चाहिए कुछ कुछ। तो काजी ने फिर क्या किया, सैनिकों को भेजा। खबर आ गई कि दो बोट लोड सैनिक भरकर आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमको तो पहले से ही श्रीवास ठाकुर का घर उखाड़ कर गंगा में फेंक देना चाहिए था, इसके पहले ही हमने पहले कहा था कि ये डेंजरस वस्तु है, ये मुसलमानों को बहुत सतर्क करेगी और हमारा जीवन हराम कर देगी, हमने क्यों नहीं किया, इसे पहले ही करना चाहिए। देखो सैनिक आ गए, उनके साथ साथ हमारा भी घर नष्ट कर देंगे, हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी हमारा घर को भी उखाड़ के नष्ट कर देंगे, हमारी प्रॉपर्टी को जब्त कर देंगे, हमको कोड़े से पीटेंगे, ये श्रीवास आंगन श्रीवास पंडित की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो श्रीवास के भी कान पे खबर आई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कुछ देर के बाद में चांद काजी और उसके सैनिक उसके घर में घुसे, और जो घर में आके, जानते ना जब आतंकवादी प्रवेश करते तो कैसे होता है, बहुत भयंकर डर पैदा करते हैं, चिल्लाते हैं, शस्त्र लेके आते हैं। तो ऐसे आतंकवादी ये घुस गए और उन्होंने मृदंग लिया और उसको तोड़ दिया। चांद काजी ने उनको चेतावनी दिया, अगर इसके बाद इस मृदंग की आवाज़ कभी सुनाई पड़ी, अभी केवल मृदंग को तोड़ा है, खोल को तोड़ा है, सब आपको सबको नष्ट किया जाएगा, सावधान, खबरदार, अगर हरिनाम की आवाज़ कभी यहाँ पर गूंजी तो। ऐसा धमका के चांद काजी अपने सैनिकों को लेकर निकल जाते हैं, मृदंग तोड़ देते हैं, भगवान की सेवा में जो इस्तेमाल करते हैं उसको तोड़ देते हैं। उस समय चैतन्य महाप्रभु गंगा जी के सामने टहल रहे थे। तो चांद काजी धमका कर आ रहा है गुस्से से, ऐसे महाप्रभु उसको देखते हैं, दुर्लक्ष करके आगे चले जाते हैं। और कुछ देर बाद गंगा जी किनारे भाग के महाप्रभु यहाँ पर आते हैं। तो श्रीवास पंडित डर के मारे यहाँ पर नरसिंह भगवान की शिवशिला है, शालिग्राम शिला, उसका पूजन आरंभ करते हैं। नरसिंह भगवान तो रक्षक है ना, वो भक्तों की रक्षा करते संकट में। नरसिंह भगवान भक्तों पर संकट आ रहा है, मृदंग तोड़ के चले गए, पता नहीं आगे भक्तों को क्या करेंगे, जिंदा मार देंगे, नष्ट कर देंगे, कष्ट देंगे, पीड़ा देंगे, भगवान बचाना, ऐसे करुणा भाग रहे हो नरसिंह भगवान के। उतने में नरसिंह भगवान का आवेश धारण करके चैतन्य महाप्रभु भाग के आते हैं वहां से। श्रीवास श्रीवास, क्या कर रहे हो तुम, क्यों डर रहे हो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं कुछ कर सकते, देखो मैं आ गया हूं, तुमने मुझे पहचाना नहीं, अरे तुम ही तो थे जो अद्वैत आचार्य ने और तुमने मिलकर मुझे पुकारा था कि आओ, ये विश्व बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है, इसका पालन अभी कोई नहीं कर सकता है, इसको कोई तार नहीं सकता, अभी आपको खुद को आना पड़ेगा, आपने और अद्वैत आचार्य ने मिलकर पुकारा, इसलिए मैं भाग के पृथ्वी पर आया, मैं वही हूं जिसको आपने पुकारा था, पहचानो श्रीवास, मुझे पहचानो, मैं वही हूं जिसे तुम पूछते हो। तो फिर श्रीवास देखते रह गए, उनको अचंभा हुआ, उनको उस समय पता नहीं था कि ये भगवान है। श्रीवास तुम किसका पूजन कर रहे हो, जिसकी तुम पूजा अब तक करते आ रहे हो वो वही हूं, मैंने आध्यात्मिक जगत को छोड़ दिया है, जब तुमने रो रोकर मुझे पुकारा तो मैं दिव्य जगत छोड़कर तुम्हारे शरण में आया, मैं इस दुष्कृतों को मारने वाला हूं और भक्तों को तारने वाला हूं, इसलिए आपको काजी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्द उसको परास्त कर दूंगा, आप मेरी पूजा करो। इसलिए भगवान सामने आ गए और श्रीवास पंडित ने निर्भय होकर भगवान की आराधना शुरू, चैतन्य महाप्रभु की आराधना शुरू की। उसके बाद में उसी शाम को महाप्रभु फिर लौट कर आए, सभी नवद्वीप धाम में उन्हें आह्वान किया कि सब भक्तों को संध्या के समय मशाल लेकर आना है, अग्नि को चलाते हुए, और मृदंग करताल हजारों लाखों की संख्या में लेकर आना है और यहां पर एकत्र होना है। इसी घर के सामने चैतन्य महाप्रभु ने सबको आह्वान दिया, प्रवृत्त किया और हजारों लाखों करोड़ों लोग यहां पर इकट्ठा हो गए। ऐसे कहते हैं कि वो कलयुग का सबसे बड़ा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, असहकार चळवळ बोलते मराठी में उसको, असहकार आंदोलन, किसी किसी क्या कहते हैं उसको, हुकुमशाही के खिलाफ महाप्रभु जी ने अपना बल दिखाया और महाप्रभु जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने करोड़ों मशाल जलाई, करोड़ों मृदंग साथ में लिए, करताल लिए और जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन आरंभ किया और यहां से वो मंडली निकली चांद काजी के घर की ओर। हम भी जाएंगे वहां पर, चांद काजी का घर जो है थोड़ा दूर है यहां से, वहां उसका घर था, महल था, तो खबर मिल गई कि मेरे कहने के बावजूद भी कीर्तन शुरू हो गया है, जाओ सैनिकों नष्ट करो उसको, जला दो, भस्म कर दो, मारो पीटो, भेज दिया सर, सब दाढ़ी वाले आ गए बाहर तलवार वलवार लेके हाथ में। हाँ, लेकिन जब पहुंचे देखा तो सागर आ रहा है, सागर पूरा ऐसे, हम लोग क्या करेंगे, सैकड़ों सैनिक यहाँ पर, हम तो पता नहीं कहाँ नष्ट हो जाएंगे इनके बीच में। तो वो पास में गए तो किसी किसी की दाढ़ी में आग लग गई अपने आप ही, तो वो एकदम आश्चर्य हो गया उनका, अरे क्या हो रहा है, दाढ़ी में आग कैसे लग रही है, तो वो भाग गए। फिर कुछ लोग अंदर घुस गए तो वो भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करने लगे, वो कुछ बोलने के बजाय उनके मुंह से हरे कृष्ण निकल रहा है, तो वो भी उसमें समा गए। और कुछ लोग दूर से देखा इसकी दाढ़ी जल रही है, वो हरे कृष्ण बोल रहा है, वो पीछे ही भाग गए और भाग के काजी को बोला कि ऐसे ऐसे हो रहा है, हमारे सैनिकों की दाढ़ी जल रही है, पता नहीं कुछ लोग हमारे सैनिक दाढ़ी वाले तलवार लेकर हरे कृष्ण कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, हम भी बहुत भयभीत हैं। तो ये सुनकर काजी भी डर गया, वो सैनिक और काजी घर दरवाजा बंद कर लिया और घर के दूसरे मंजिल पर आकर छुप गया। फिर इनका आंदोलन जो है हरे कृष्ण आंदोलन आगे आगे बढ़कर काजी के पास गया और सब भक्त लोग चिल्ला रहे, मारो काजी को, मारो, खत्म करो, काट डालो, ना उसको कहते हैं मॉब मेंटेलिटी, है ना, जब बड़ी संख्या में होते हैं ना तो सबसे कमजोर आदमी भी एकदम जोरदार बन जाता है। इसलिए संग करना चाहिए भक्तों का, जब भक्तों का संग करते हैं तो भक्ति की शक्ति और निर्भयता प्राप्त होती है। हमारे अंदर भक्ति करने में जो डर लगता है ना कि हमारा घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, शायद धन से विरक्ति होगी, शायद पद से विरक्ति होगी, धंधा नहीं कर पाएंगे, नहीं करना है हमको, ये नहीं करना है, ये बहुत मुश्किल बात है, पता नहीं हम विरक्त हो जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर ऐसे कोई है, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उनको सब कुछ पता है कि हम लोग क्या करते हैं और बहुत मानते भी हैं, उनको श्रद्धा भी है, लेकिन अंदर नहीं आते हैं क्योंकि उन डर लगता है कि अंदर आएंगे तो बाद में ऑपरेशन कैसे करेंगे, परिवार में बिजनेस में आगे बढ़ने का जो है ना जील, जो क्या कहते हैं उसको, जोश है ना, वो खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आगे जाके हम लोग। उनको पता है सब हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन उनको हमारे हाथ से भौतिक वस्तुओं का जो अधिकार है वो छूट जाएगा। भगवान से हम प्रेम, लेकिन विरक्त हो जाएंगे, इसका डर रहता है। तो वो जो भक्त थे वो पहले डर के मारे नहीं करते थे कीर्तन, अभी कर रहे हैं महाप्रभु के संग के, भक्तों के संग में। तो वो चिल्ला रहे, मारो मारो काजी को मारो, तो काजी के कान में आवाज आ रही दूसरे माले पे, मारो मारो मारो, काजी बहुत डर जाता है। तो भगवान कहते हैं शांत हो जाओ, मैं जाके बात करता हूँ। दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। भगवान कहते हैं काजी मैं आपको मिलने आया हूँ, आपका अतिथि हूँ, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते। बहुत देर बाद हिम्मत करके काजी नीचे आते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। फिर भगवान से डिस्कशन करते हैं कि आप लोग हमारे भक्तों को क्यों रोकते हैं। वो कहते ये काफिरों का नाम है, ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान और काजी के बीच में चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। वो कुरान से बोलते हैं, ये वेदों से बोलते हैं, और भगवान काजी को डिफीट करते हैं। बड़ा लंबा संवाद है उनका, गौ हत्या के बारे में भी चर्चा होती है। और ये सब चर्चा होने के बाद अचानक काजी कहते हैं मुझे एक बात आपको बतानी है। वो बात ये है कि जिस दिन मैं श्रीवास आंगन में गया था और खोल मृदंग तोड़कर धमकाकर लौट के आया था, उस रात को मुझे एक सपना आया। उस सपने में आधा सिंह आधा आदमी, लाल लाल आंखें लेकर, नाखून खून से भरे हुए नाखून लेकर, गर्जना करते हुए प्रकट हो गया सपने में, और उसने मेरे गले पे छलांग लगाई। मैं सोया था, मेरे ऊपर छलांग लगाकर अपने दोनों पंजे मेरे कंधे में घुसा दिए और धमकी दी कि तुमने अगर इसके बाद कभी मेरे भक्तों को रोका तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। याद रखना, मेरे भक्तों को हरिनाम संकीर्तन से आप रोक नहीं सकते। तो कहता है कि मैं बेहोश सा हो गया, पूरा मेरा बिस्तर पसीने से गीला हो गया, मेरे आंखों से आंसू आनंद के नहीं भय के बहने लगे, और मैं कांप रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरे कंठ से आवाज नहीं निकल रही थी, मैं केवल हाँ 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 कर रहा था। और ये धमका कर वो जो अजीब व्यक्ति था, भयंकर सिंह के मुंह वाला, वो गायब हो गया। आपको देखना है, उसने वस्त्र उतार कर चैतन्य महाप्रभु को दिखाया, खून और नाखून के निशान। हाँ, आप समझ गए ना कौन थे वो, समझ गए ना कौन थे वो, नरसिंह भगवान की। सब भक्तों की रक्षा करने वाला नरसिंह भगवान। उसी समय मैं समझ गया था कि अभी मुझे इसका विरोध नहीं करना चाहिए। तो फिर वो उसके बाद में उसने बताया कि मैं ये समझ चुका हूँ कि वो भी भगवान थे जो मेरे सपने में आए, और आप भी मेरे प्राण प्रिय अल्लाह हो जिसके मैं पूजन करता हूँ, आप में उनमें कोई अंतर नहीं है, ये मेरे हृदय में विश्वास हो गया है। और मैं वादा करता हूँ इसके बाद मेरे वंश के कोई लोग कभी भी हरिनाम संकीर्तन को विरोध नहीं करेंगे। अभी तो नहीं करेंगे ही नहीं करेंगे, जब मैं मरूंगा मेरे पुत्र आएंगे, उनके पुत्रों के पुत्र आएंगे, यहां पर राज करेंगे, कभी भी आपके हरिनाम संकीर्तन को विरोध नहीं करेंगे। इस तरह से भगवान ने साम दाम दंड भेद सभी वस्तुओं का उपयोग करके हाँ भक्तों का विजय प्राप्त किया। क्योंकि भगवान को इस संकीर्तन आंदोलन को केवल नवद्वीप में फैलाने का नहीं था, उनको पूरे विश्व में फैलाना था। उसको क्या उन्होंने ऐलान किया था, भविष्यवाणी की थी, पृथ्वी ते आचे सर्व नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, पृथ्वी के हर एक शहर में नगर में ग्राम में मेरा नाम कीर्तन किया जाएगा। और आज देख रहे हैं हम, हाँ चाइना में, हांगकांग में, रशिया में, जहाँ पर कम्युनिस्ट का कंट्री है, जहाँ पर कोई नाम लेने के लिए अंडरग्राउंड करना पड़ता है, वहाँ पर भी हरे कृष्णा के भक्त हैं। जैसे मुसलमान लोग जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करके एक बार हज यात्रा करते हैं, वैसे गरीब चाइनीज लोग जिंदगी भर पैसा इकट्ठा करके एक बार मायापुर वृंदावन की यात्रा करते हैं। इट्स ओनली वन लाइफ टाइम फॉर देम, ओनली वंस। हम लोग तो भाई बार बार आ सकते हैं, उनके लिए एक ही बार। मैंने देखा है, रोते हैं लोग, रोते हैं रोते हैं रोते हैं वृंदावन में, बरसाने में, मायापुर में आकर रोते हैं, क्योंकि वो वापस आने वाले नहीं है। केवल लाइफ में एक ही बार धोती कुर्ता पहनेंगे वो यहाँ पर आने के बाद, धोती कुर्ता यही छोड़ के जाना पड़ता है उनको, उनके कंट्री में अलाउड नहीं है। एक एक भगवद गीता अंडरग्राउंड स्मगलिंग करके एक एक हजार लोग पढ़ते हैं उसको और जीवन में उतारते हैं। हमारे पास गीता तो अवेलेबल है, आप कितना चाहिए उतना कॉपी खरीद सकते हो, लेकिन हमारे में अंदर उतनी पालन करने की प्रवृत्ति नहीं है जितनी उनके अंदर है। जो यवन म्लेच्छ चांडाल इससे भी नीचे लोग जो होते हैं, वैसे देशों में रहते हैं और गंदे गंदे संस्कृति से उनका जन्म हुआ है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन वहां तक पहुंचा हुआ है। अपनी जिंदगी का रिस्क लेते हुए भक्त सन्यासीगण उनके देश में भेष बदल कर जाते हैं और प्रचार करके उनको भक्त बनाते हैं, और वो लोग फिर जिंदगी का पैसा इकट्ठा करके एक बार मायापुर में आते हैं, वृंदावन में आते हैं। हम लोगों को कभी कभी शर्म आती है देख के, हमारा तो जन्म इधर हुआ है, हमारी ये भूमि में अंदर हम पैदा हुए हैं। हाँ, ये सब सुनते हुए, राम कथा, कृष्ण कथा, रामलीला, महाभारत, रामायण, ये सब सुनते हुए हमने जन्म लिया है। लेकिन हम लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, और जो वो लोग कर रहे हैं उसको अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, और वो लोग सब कुछ करके उनका दिल भर गया है, तो हम लोग जो कर रहे थे पहले अब नहीं करते, पहले कर रहे हैं उसका अनुकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप लोग कर रहे हो, अब बहुत अच्छे भक्त हो, मैं वो आम जनता की बात कर रहा हूँ जो ब्राह्मण कुल में हो या और किसी कुल में, भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है लेकिन उनका माइंड कहाँ पर है, पश्चिम दिशा में। पश्चिम लोगों का माइंड जो है पूर्व दिशा में, और यहाँ का माइंड पश्चिम दिशा में, एंटीना उधर लगा हुआ है पूरा, सब वहाँ का सब आता है उनकी स्क्रीन के ऊपर क्या क्या चल रहा है, और उसको हुबेहूब पालन करना चाहते हैं वो लोग। हाफ पैंट पहन रहे हम भी हाफ पैंट पहन रहे, वो हाफ टी शर्ट पहन रहे हम भी हाफ टी शर्ट, वो लोग नंगा घूम रहे हम भी नंगा घूमने लगे। इतनी हमारी मति मंद हो गई है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये ऐलान किया, इसलिए काजी का लीला किया क्योंकि उनको ये हरिनाम संकीर्तन को विश्व भर में फैलाना था। और ये हरिनाम संकीर्तन की महिमा कैसी है कि जहां पर भी ये हरिनाम संकीर्तन होता है ये वैकुंठ बन जाता है। वैकुंठ का मतलब क्या है? कुंठ यानी जहां पर दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, चिंता है, एंग्जाइटी है, परेशानियां है, रोग है, बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है, उसको कुंठ कहते हैं। और वैकुंठ का मतलब है जो इन सबके परे है, जहां पर ये सब चिंता, परेशानी, पीड़ा, मृत्यु, रोग, बीमारी, जन्म वहां पर नहीं है, वैकुंठ। अगर गटर के बाजू में भी खड़े रहकर, अगर मुंबई के अंदर आग धारावी के अंदर गटर के पास खड़े रहकर कुछ भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो वो जगह वैकुंठ हो जाते हैं। और आपको अगर कितनी भी पीड़ा, चिंता, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन कुछ भी होगा ना, हमारी मैडम पता है ना आपके पास तो कितने मर जाते होंगे, टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेशन, कंपल्शन, बाप रे ना बड़ा लिस्ट है। सब लोग परेशान हैं, सबका मन दुखी है, चिंतित है, क्या करे, सुसाइडल टेंडेंसी है, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति है, पता नहीं इतने 21वीं सदी के अंदर इतने मन के विकार बढ़ गए हैं, सब परेशान हैं। उनको आप कीर्तन में लेके आइए, आपको लगता होगा अरे इतना आसान साइकेट्री पूरा सिंपल कर दिया लेकिन सत्य है ये आपका क्या होगा, आप भक्त बनेंगे, परमहंस भक्त बन जाएंगे, हाँ, भगवान के चरणों में, और आपके सहारे से सारे साइकेट्री पेशेंट भी भक्त बन जाएंगे। डोंट वरी, जब भगवान का सहारा लेते हैं ना हम लोग तो हमारा भी उद्धार होता है और हमारे साथ जो चिपके हुए उनका भी उद्धार हो जाता है। तो ऐसे कीर्तन के समय पर जो भी प्रवेश करता है कम से कम उतने समय के लिए क्यों ना हो सभी मन की चिंताएं परेशानियां मुक्त हो जाते हैं हम लोग। आप कोशिश करके देखो, अभी इसके बाद हम लोग यहां पर जहां पर संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन हुआ था, आरंभ हुआ था, वहां पर सब लोग कीर्तन करेंगे, झूम झूम कर नाच के कीर्तन करेंगे। आप अनुभव करना, जितना दिल से आप भाग लेंगे उतना निश्चिंत हो जाएंगे आप, जितना रोक रोक के आप करेंगे उतना परसेंटेज आपका कम हो जाएगा। आई एम ऑलरेडी इन्फॉर्मिंग यू, प्लीज बाद में बोलना नहीं, प्राप्त जो आपने बोला कोई आनंद का अनुभव नहीं हुआ, यू आर द कॉज नॉट मी। जितना आप भाग लेंगे हृदय से उतना आपको उसमें आनंद आएगा। तन मन आत्मा से जो प्रवेश करेगा संकीर्तन में वो तन मन आत्मा के सब रोग से मुक्त हो जाएगा। तो ये जगह जो है श्रीवास आंगन। तो अभी बची बात है महाप्रकाश लीला। तो यहां पर अनंत लीलाएं हैं, घंटों 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 घंटों। चैतन्य चरितामृत जो है 17 खंड का ग्रंथ है, 17 खंड है उसके अंदर चैतन्य चरितामृत। बंगाली में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु चैतन्य के जीवन पर वो किताब लिखी है, उसका आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला से 3 भाग है, 17 खंड है उसके। हाँ, तो उसमें इतना सुंदर वर्णन दिया है कि श्रीवास आंगन के घर में क्या क्या हुआ। तो एक लीला हुई इसमें महाप्रकाश लीला, ये बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि उनका दर्शन यहां पर है, आपको समझेगा नहीं क्या है। तो महाप्रभु चैतन्य ने कभी भी अपना रूप जो प्रकट नहीं किया, कभी कभी उन्होंने गिने चुने समय पर मैं भगवान हूं यह प्रकट किया। तो एक दिन वो ऐसे ही आए श्रीवास के घर पे, और श्रीवास ने अपने मंदिर में बीच की जगह पर शालिग्राम शिला रखी थी जहाँ जिसका पूजन वो करते थे, और चैतन्य महाप्रभु भी खुद आकर उसका पूजन करते थे। सिंहासन पे, वेदी पे श्रीवास पंडित ने शालिग्राम शिला को रखा था, समझो आपके घर में कोई आदमी समझो, आपके पति है समझो, आपका मंदिर है वहाँ पर आपने भगवान को रखा है, सब फोटो रखे हैं, मूर्ति रखी है, सडनली आपका पति आता है, सब फोटो निकालता खुद बैठ जाता है वहाँ पर, तो क्या लगेगा आपको? क्या पागल तो नहीं हो गया? व्हाट इज हैपनिंग? भगवान की जगह आप क्यों बैठ रहे हैं यहाँ पर? महाप्रभु आए, शालिग्राम शिला लिया, अपने गोद में रखा और खुद बैठ गया वहाँ पर। सब लोग आश्चर्य हुए, क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? श्रीवास को बोला, श्रीवास मेरी पूजा आरंभ करो। श्रीवास बहुत चकित हो गया, अरे पटो, तुरंत आज्ञा का पालन किया। सब लोग भाग भाग के गए, नित्यानंद प्रभु आए, हरिदास ठाकुर आए, अद्वैताचार्य आए, सब लोग आए, उन्होंने पूजा का साहित्य इकट्ठा किया, तुरंत भगवान की पूजा आरंभ किया। पूजा समाप्त होकर भगवान ने सब माला वाला सब चरण धुलवाए, माला स्वीकार किया, सबकी पूजा स्वीकार किया, और सब लोग देख रहे हैं आज क्या भगवान का मूड है, मतलब महाप्रभु जी का मूड क्या है आज। तो कह रहे हैं कि जाओ दुखी को बुलाओ। दुखी सर्वेंट थी इनके घर पे, पानी भरती थी जमुना जी के, जो गंगा जी के किनारे जाकर पानी भरकर लाके देते थे अभिषेक करने के लिए। दुखी आज से तुम्हारा नाम सुखी हो जाएगा। तो दुखी जो है वो ऐसे गदगद होकर खपने लगे, आनंद से नाचने लगी। बस श्रीवास देखा तुमने, तुम्हारे घर पे जितने भी काम करते हैं, तुम्हारे से जितने संबंधित है, सबको आज मैं कृपा दूंगा। एक एक को बुलाकर सबको आनंद से गदगद कर दिया उन्होंने। तो उस लीला को कहते हैं महाप्रकाश लीला। वो कितना घंटा चली? एक घंटा, डेढ़ घंटा, सवा घंटा, 21 घंटा चली वो। उसको कहते हैं षट प्रहरी लीला। एक प्रहर होता है 3 घंटे का, सत प्रहरी लीला मतलब 7 का 21 घंटे तक ये चलता रहा। और जितने भी भक्त नवद्वीप में थे सबको भगवान ने एक एक करके बुलाया और सबकी तमन्नाओं को पूरा कर दिया। मुरारी गुप्ता आए, हाँ मुरारी गुप्ता, मैंने कहा ना हनुमान जी के अवतार है, वैद्य थे वो। भाई मुरारी तुम जानते हो तुम कौन हो? देखो मैं आपको तुम्हारा मेरा रूप दिखाता हूं, तुम्हारे इष्ट भगवान कौन है मैं जानता हूं, तुम राम भक्त हो। तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने उनको सीता राम लक्ष्मण का दर्शन दिया उनके आंखों के सामने। मुरारी को बताया, मुरारी तुम हनुमान हो। तुरंत मुरारी के पीछे से पूछ निकल आई, हनुमान जी के भाव में आ गए। ऐसे सबको दर्शन दिया उन्होंने। मैं कितनी क्या बताएं आपको, बहुत लंबी लीला है ये, आप आराम से चैतन्य चरितामृत में पढ़ सकते हैं क्या क्या हुआ उसके अंदर। हाँ फॉर एग्जाम्पल एक भक्त हैं कोलवेज श्रीधर, उनकी कहानी आपको मैं उनके घर में बताऊंगा जब जाऊंगे जाएंगे हम लोग वहां पर। अद्वैताचार्य आए, उनको भी कृपा कर दिया। एक एक करके सब भक्तों को बुलाया उन्होंने, इसको बुलाओ उसको बुलाओ करके सबको बुलाकर सबको आनंद से विभोर कर दिया उन्होंने। फिर सची माता आई, उनकी माता। तो भक्तों ने कहा महाप्रभु जी आपकी माता, जगन माता, विश्व की माता, इन पर कृपा करो। उन्होंने कहा नहीं, मैं मेरी माता पर कृपा नहीं कर सकता क्योंकि वो अपराधी है। मैंने बताया ना आपको, क्या बताया था, उनके जो बड़े पुत्र थे विश्वरूप, वो अद्वैत आचार्य के घर में भागवत पढ़ते थे और वहां से संन्यास लेकर भाग गए। तो उनके मन में ये अपराधी भावना थी कि अद्वैत आचार्य है ना, इसने मेरे बच्चे को बिगाड़ा है, मेरे घर से विरक्त करके उसको मुझसे छुड़वा के घर से भगा इसने दिया है, ये दोषी व्यक्ति है। आप जानते हो अद्वैत आचार्य मेरे भक्त हैं, महाविष्णु के अवतार हैं, मैं सहन नहीं कर सकता मेरे भक्त के प्रति मन से किया अपराध भी मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए मेरी माता को कृपा नहीं मिलेगी। तो सब भक्तों ने कहा नहीं, वो हमारी माता है, आपकी माता है, हमारे लिए पूजनीय है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उपाय बताओ। मैंने कहा जब तक वो स्वयं जाकर अद्वैत आचार्य के चरणों की धूल नहीं लेती है और अपने अपराध की क्षमा नहीं मांगती है तब तक मैं उस पर कृपा नहीं करूंगा। तो सची माता रोने लगी, तुरंत अद्वैत आचार्य घर में भाग के गई और बताया गया उनको कैसे ऐसे है। तो अद्वैत आचार्य बहुत शर्मिंदा हो गए, नहीं तो आप मेरी माता हो, आप मेरी पूजनीय हो, ये कैसे, कोई अपराध नहीं आपकी तरफ से, कोई अपराध मेरे लिए लिया नहीं, कोई स्वीकार नहीं किया है। लेकिन उनको पता था कि ये कुछ भी बोलेंगे तभी इनकी कृपा मुझे प्राप्त करनी ही करनी है। तो ये सब बोलने लगे तो अद्वैत आचार्य जो है वो सची माता का गौरव गाने लगे कि तुम कितनी महान हो, तुम भगवान की माता हो, तुम जगन्नाथ मिश्रा की पत्नी हो, हमारे लिए वंदनीय हो, पूजनीय हो। और ये बोलते 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 अद्वैत आचार्य बेहोश हो गए आनंद में, गौरव करते करते जब बेहोश हो गए तुरंत सची माता ने उनके चरणों के रज को अपने सर पर लगाया और फिर तुरंत महाप्रभु ने उन पर कृपा किया। और यहाँ पर आते ही भक्ति के दिव्य आनंद से मोहित होकर वो बेहोश हो गए। इस तरह से भगवान ने दिखाया कि भले चाहे मैं कितनी कृपा के मूड में हूं लेकिन मैं वैष्णवों का अपराध नहीं सहन सकता। भले मैं आज बहुत दयालु भाव में हूँ, मेरा बर्थडे होगा या मेरा कुछ अदर मूड होगा, लेकिन ऐसे अति दयालु भाव के अंदर भी मैं वैष्णवों के अपराधियों को नहीं भूलता हूँ, उन पर कृपा नहीं करता। हमारे लिए इसमें क्या सूचना है कि हम चाहे कितनी भक्ति करेंगे, बड़ी बड़ी सेवा करेंगे, 64 माला करेंगे, 132 माला करेंगे, फिर भी वैष्णवों का अपराध करेंगे, आपकी सारी साधना फेल है। साधना पे गर्व करने की कोई जरूरत नहीं, वैष्णवों से प्रेम करना चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, कभी भी वैष्णवों का अपराध नहीं करना चाहिए, चाहे वो नौ सिखिया भक्त क्यों ना हो, एक माला करके आरंभ करने वाला भक्त क्यों ना हो, वो भगवान को प्रिय होता है। हम सोचते हैं हम जूनियर हैं, आप सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, आप मैं जूनियर सीनियर हूँ, आप जूनियर है, आप नौसिखिया है, मैं पुराना हूँ, मैंने आपको सिखाया है, ये सब कुछ बातें लौकिक बातें हैं। जो भगवान के नाम का जप करता है वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है, और उसके खिलाफ हम कभी भी अपराध नहीं कर सकते, कभी उसको दिल को नहीं दुखा सकते, क्योंकि हम भक्त जो होते हैं भगवान के बालक की तरह होते हैं। उनकी पूजा करेंगे और उनके बालक के कान पे तमाचा लगाएंगे तो भगवान तुम्हारी पूजा को ठुकरा देंगे। आई डोंट वॉन्ट योर वर्शिप, मेरे बालक को क्यों आपने ठुकरा दिया, क्यों दुख दिया उसको। आप कैसे करते हैं, आपके घर पे आऊँगा मैं, आपको गिफ्ट दूंगा, आपके मीठे मीठे वचन बोलूँगा, आपके तरफ से बहुत गौरव करूँगा, और जाने के समय आपके बालक को एक तमाचा मार के निकलूँगा, तो आप क्या करेंगे, सारे गिफ्ट लेके खिड़की से बाहर फेंक देंगे और दंडा लेके मेरे पीछे आएंगे, मेरे बालक को क्यों आपने दंड दिया। यू डोंट केयर फॉर योर वर्शिप, यू केयर फॉर योर चाइल्ड। उसी तरह से भगवान की बहुत पूजा करेंगे हम, बहुत भक्ति दिखाएंगे, लेकिन उनके भक्तों पर अगर अपराध करेंगे तो वो सहन नहीं कर सकते। तो हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो इस महाप्रकाश लीला में जो श्रीधर कॉलवेज के ऊपर कृपा किया गया वो आपको मैं वहां बताऊंगा। इस महाप्रकाश लीला में 3-4 बार भगवान ने रात को यहाँ पर कीर्तन करते थे, रात को बंद करके 3 बार ऐसे अचानक उन्होंने बंद कर दिया। एक बार ऐसे ही रात को बंद करके कीर्तन हो रहा था तो अचानक भगवान ने कीर्तन रोक दिया, बोला कि आज मुझे कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ यहाँ गड़बड़ है, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो यहाँ पर होने के योग्य नहीं है। बोले कोई नहीं, बहुत पूछते हैं कौन है, बताओ कौन है यहाँ पर, कोई तो भी है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे से श्रीवास पंडित बोलते हैं कि हाँ एक यहाँ पर ब्रह्मचारी छुपा हुआ है, लेकिन महाप्रभु जी, लेकिन वो बहुत अच्छा भक्त है, वो बहुत इतना बढ़िया भक्त है जो केवल दूध पीता है, वो कुछ नहीं खाता है, केवल दूध पी के तपस्या करके बड़ा तपस्वी व्यक्ति है। महाप्रभु कहते हैं क्या आप समझते हो कि तपस्या करने से इस दिव्य कीर्तन में आप भाग ले सकते हो, मुझे प्रसन्न कर सकते हो। नहीं, तपस्या वो चीज़ नहीं है जो मुझे प्रसन्न करती है। वो क्या समझता है केवल दूध पी के मुझे प्राप्त कर सकता है वो? तपस्या करना, ज्ञान प्राप्त करना ये अलग बातें हैं, भक्ति ये अलग विषय है। हम सोचते हैं बड़े तपस्वी है, बड़े ज्ञानी है, शास्त्र पढ़ चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब अलग अलग विषय हैं, और भक्ति का पूरा पूरा अलग विषय है। तो महाप्रभु के श्रीवास ने वो बक्से को खोला जिसके अंदर वो छुपा था, ढक्कन खोला और महाप्रभु ने उसको पकड़ा, ऐसे बाहर निकाल के कमरे के बाहर कर दिया। तो फिर वो बहुत रोने लगा, लेकिन उसने कहा कि कम से कम मुझे देखने तो मिला, कुछ समय के लिए कुछ अनुभव करने को मिला। महाप्रभु को वंदन किया उसने, बाहर चला गया। तो श्रीवास ने कहा कि बड़ा पश्चाताप कर रहा है वो, अपने आप को बड़ा पश्चाताप कर रहा है। तो महाप्रभु ने उसको दोबारा बुलाया और दोबारा बुला के इसको कीर्तन में भाग करने दिया। दूसरी बार कीर्तन कर रहे तो रोक दिया उसने, अभी कौन यहाँ पर बैठा है? तो श्रीवास ने कहा कि मेरी सासू जी यहाँ पर बक्से में बैठी। सबको अपना अपना होता ना कि मेरे सासू है, मेरा नंदी है, मेरी हाँ मेरी साली है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, उसके भाई का लड़का है, चाचा का लड़का है। हम चाहते हैं कि जब कृपा बढ़ती है तो सबको लाइन में लगा रही, कोई तुम भी आ जाओ, गुरु महाराज जी मेरी पत्नी की बहन का लड़का है, गुरु महाराज जी मेरे ससुर के भाई का जवाई है। जो भी रिश्ता निकाल के आते हैं प्रभु जी ये कृपा कर देना। वैसे वो भी बेचारा, हाँ सासू जी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति, बहुत समझ जाना, वेरी इंपॉर्टेंट, दोज वो आर मैरिड नो हाउ इम्पोर्टेंट, हाउ एवर पावरफुल यू आर हेल्पलेस देयर। कुछ पोजिशन ऐसे होते हैं ना जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। तो उन्होंने कहा कि तो श्रीवास ठाकुर ने जब देखा कि ऐसे हो रहा है तो बहुत महाप्रभु जी को क्रोध आ रहा था, तो उन्होंने उनको बाहर कर दिया घर के। तो उसके बाद में एक बार कीर्तन करते करते महाप्रभु जी रुक गए, उनका क्या हुआ, आज वो आनंद नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर दुख का कारण कुछ हो रहा है। तो हुआ ये था कि कीर्तन जब जोरदार चल रहा था तो अगले कमरे में श्रीवास का जो इकलौता पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन श्रीवास को जब ये समझ में आया तो भाग के अंदर कमरे में गए, बोले कोई रोना नहीं, महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे हैं, उनके कीर्तन में आपके दुख की वजह से बाधा नहीं आनी चाहिए, अभी आपको रोना नहीं, बिल्कुल कमरा बंद करो, मुंह बंद करके बैठो, आवाज नहीं आना चाहिए। और फिर कीर्तन में चले गए, फिर कुछ बार कीर्तन बंद हो गया और महाप्रभु उनको पूछने लगे श्रीवास को, कोई यजमान ना होस्ट है वो, क्या हुआ? वो कुछ बोल नहीं रहे, बताओ क्या हुआ, आप तो बता नहीं रहे, बताओ बताओ क्या हुआ। फिर बोले मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। बोले कहाँ पर है, आपने बताया क्यों नहीं, कितनी देर हो गई? बोले बहुत देर हो गई, क्यों नहीं बताया मुझे, चलो अंदर लेके चलो। तुरंत अंदर चले जाते हैं तो सब स्त्रियाँ बैठी हुई हैं, बीच में पुत्र की जो शव है बीच में पड़ा हुआ है। तो महाप्रभु जी कहते हैं, पुत्र लौट के आ जा। तो तुरंत वो उठ के खड़ा हो गया। तो देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जाने के बाद रो रहे हैं। तो पुत्र जो वापस लौट के आता पूछते हैं, कौन से माता पिता, मेरे तो कई माता पिता हो चुके हैं, आप कौन से माता पिता की बात कर रहे हैं? मैं श्रीवास और बालिनी की बात कर रहा हूँ। फिर वो बालक के मुंह से, जो वापस लौट के आया है, उसके मुंह से चैतन्य महाप्रभु बड़ा शास्त्र का सिद्धांत सुनाते हैं और फिर बालक को विदा कर देते हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु के मन में विश्व के कल्याण के लिए हरिनाम संकीर्तन को फैलाने के लिए संन्यास लेने की भावना जो है वो जग रही थी। तो जब उन्होंने देखा कि श्रीवास जैसे भक्त जो हैं वो अपने बालक की, इकलौते पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी मुझ पर इतना प्रेम करते हैं और मेरे कीर्तन की आनंद में बाधा डालना नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्तों का त्याग मैं कैसे कर सकता हूँ? हाउ विल आई बी एबल टू लीव सच अ डिवोटी लाइक श्रीवास? ऐसे वो एकांत में जाके बात करते हैं बाजू में आकर। तो ये भी लीला यहाँ पर हुई है। ऐसे कहते हैं कि इस जगह पर एक वैली थी, एक क्रिपर फूलों की वैली थी जो गौलोक वृंदावन से यहाँ प्रकट हुई थी और उसमें कभी भी लाखों करोड़ों फूल हुआ करते थे और जितने लाखों फूल भक्त निकालते थे उतने ही उसमें पैदा होते थे। ऐसी एक कल्पद्रुम कल्पलता यहाँ पर हुआ करती थी, ऐसा भी वर्णन यहाँ पर है। इसी जगह पर नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत दर्शन दिया, उसको कहते हैं षडभुज दर्शन। अगर आप हमारे इस्कॉन के मंदिर में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर राधा माधव चार सखी यहाँ पर, चार सखी यहाँ पर विराजमान है, उसके यहाँ पर दो व्यक्ति नाच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ऐसे दीवाल के अंदर बनाया हुआ एक डायरमा है। राइट साइड में हमारे भगवान के लेफ्ट साइड में एक डायरमा है, आपने कभी देखा है उसको ठीक से? आज जाके देखना। हाँ, उसमें भगवान का एक अद्भुत दर्शन है, उसको कहते हैं षडभुज। उसके छह भुजाएं हैं, दो भुजाओं से दो भुजाएं नीली है, उसमें बांसुरी बज रही है, दो भुजाएं जो है एक में धनुष एक में बाण लेके खड़े हैं और दो भुजाएं में एक में कमंडल और संन्यास का डंडा है ना, फोटो नहीं, ऐसा डायरमा है, दीवार के बाहर ऐसे बना हुआ है इसको। तो भगवान ने क्या दिखाया कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ और मैं ही चैतन्य महाप्रभु। ये षडभुज का दर्शन जो है, दो हाथ हरे रंग के जो धनुष और बाण पकड़ के खड़े हैं, दो मुरली बजाने वाले नीले रंग के और जो कमंडल और दंडा वाले हाथ हैं वो गोल्डन कलर के, ऐसा दर्शन वहाँ पर अद्भुत दर्शन है, वो दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर दिखाया। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित के आनंद के लिए यहाँ पर कुरुक्षेत्र प्रकट किया, कुरुक्षेत्र प्रकट किया और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण बने, अर्जुन को प्रकट किया और 18 अक्षौहिणी सेना को भी प्रकट किया, इस घर में पूरा कुरुक्षेत्र प्रकट कर दिया उसके आनंद के लिए, उसको दर्शन दिया उन्होंने। ऐसी बहुत बहुत अद्भुत लीलाएं यहाँ पर हुई है। तो ये जो घर है, इस घर में जो चैतन्य महाप्रभु के छह प्रमुख शिष्य हैं, गोस्वामी कहते हैं उनको, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये छह गोस्वामी महाप्रभु जी के अगले पीढ़ी के भक्त हैं। उन्होंने उनको महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया और उनके प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने विश्व भर में प्रचार किया, मतलब भारत भर में आगे जाकर। तो उसमें से जीव गोस्वामी एक प्रधान भक्त थे जो रूप गोस्वामी के भाई के लड़के थे, रूप सनातन भाई थे, उनका तीसरा भाई था वल्लभ, उसके पुत्र का नाम था जीव। तो ये जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अंतर्दान होने के बाद में यहाँ पर आए और स्वयं बलराम जी के अवतार नित्यानंद प्रभु ने उनको हाथ पकड़कर पूरे ब्रज की यात्रा कराई, पूरे नवद्वीप की यात्रा कराई। तो जीव गोस्वामी को लेकर नित्यानंद प्रभु यहाँ पर भी आए थे। यहाँ पर आते ही जीव गोस्वामी बेहोश होकर जमीन पर गिर गए और लोटपोट होने लगे, उनके आंखों से आंसू आने लगे। चैतन्य महाप्रभु के जो दिव्य लीलाएं हैं उनके बारे में नित्यानंद प्रभु ने उनको वर्णन सुनाया। फिर वो दोबारा होश में आए, फिर बेहोश हो गए, और जब तीसरी बार होश में आए तो उनकी आंखों के सामने जो अंतर्धान हो चुके थे पहले, वो सब चैतन्य महाप्रभु, उनके साथी नित्यानंद प्रभु उनके बीच में खड़े, फिर अद्वैत आचार्य श्रीवास सब लोग प्रकट हो गए और उनकी आंखों के सामने कीर्तन करने लगे। वो देखकर वो दोबारा बेहोश हो गए। फिर जब होश से उठे तो सब अंतर्ध्यान हो चुके थे, उनके साथ केवल यात्रा कराने वाले नित्यानंद प्रभु खड़े थे। तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि मेरी जितनी भी भौतिक दुनिया के कष्ट और पीड़ाएं हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं क्योंकि मैं इस स्थान पर आया हूँ। तो इस स्थान के अंदर वो शक्ति है कि आपकी सारी भौतिक पीड़ाओं को ये स्थान नष्ट कर सकता है और आपको दिव्य आनंद को प्रदान कर सकता है। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि श्रीवास आंगन में हृदय से प्रणाम करो, ये हमारे लिए आखिरी होप है। अगर हम सब लोग भौतिक दुनिया में तड़प रहे हैं तो हमको उससे से मुक्त होना है। हाँ, कोई जादू टोना तंत्र मंत्र आपको नहीं बचा सकता है। एक ही महामंत्र का जो, क्योंकि हमारा टेप प्रवृत्ति है, जैसे मेरी बेटी बीमार रहती है तो लोग बोलते हैं कि नासिक में बाबा है उसके पास जाओ वो पानी देगा, फिर वो बोलते साउथ इंडिया में जाओ वो ये करेगा। मतलब प्रवृत्ति कैसी होती है, जादू टोना मंत्र तंत्र सिद्धि विद्धि के चक्कर में आदमी फंसता है जब संकट में आता है। किसी को घर में क्लेश है, पत्नी के साथ बनती नहीं है, डिवोर्स होने वाला है, किसी का प्रॉपर्टी का क्लेश है, किसी का क्या है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि जब ये बाबा के पास गंडा बांध देंगे तो थोड़ा कष्ट दूर हो जाएगा, यहाँ पर मंत्र करेंगे कुछ मटके में गंगा जल रखेंगे कुछ मंत्र बोलेंगे तो ये कष्ट खत्म हो जाएगा। हमारा मंत्र भक्ति छोड़कर, हमारा मन जो है भक्ति छोड़कर सभी दिशा में भटकता है, लेकिन भक्ति छोड़कर किसी मार्ग से आपका कल्याण नहीं होने वाला है। केवल भक्ति के मार्ग में आएंगे तो ही भक्ति में वो शक्ति है जो समूल आपके पापों को और कष्टों को नष्ट कर सकता है। पाप के तीन भाग होते हैं, एक होते हैं बीज, एक होता है पाप करने की प्रवृत्ति, और एक होते हैं एक्चुअली पाप जो हम करते हैं, और चौथा होता है पाप के फल। तो सारी विधियां करने से आपके पाप के फल नष्ट होंगे और पाप भी नष्ट होंगे, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति और पाप का बीज नष्ट नहीं हो सकता। ज्ञान कांड से, कर्म कांड से, तपस्या करने से, योग करने से केवल पाप फल नष्ट हो सकता है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति और पाप का जो बीज, भगवान का विद्रोह का जो बीज है, वो केवल हरिनाम संकीर्तन से, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही नष्ट हो सकता है। समय लगेगा लेकिन केवल इसी उपाय से वो नष्ट हो सकता है। इसलिए जादू टोना बाबा के चंद्र में मत पड़ना। चैतन्य महाप्रभु स्वयं गोलोक वृंदावन से आए हैं और उन्होंने गोलोक का जो प्रेम धन है खुले हाथ से यहाँ पर लुटवाया है, उसी को ले लो। बाकी छोटे मोटे यहाँ वहाँ के आनंद के पीछे मत भागो, यहाँ वहाँ के उपाय के पीछे मत भागो। शुद्ध होकर जीवन बिताओ, हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, मांसाहार करना छोड़ दो, शराब पीना, सिगरेट पीना, नशा करना, व्यभिचार करना छोड़ दो, भगवान का प्रसाद खा लो, भगवान के भक्तों का बड़े प्रेम से अपराध किए बिना संग करो और शास्त्र का अध्ययन करो, भगवान के उपदेश को पढ़ो। बस इतना करेंगे तो इसी जीवन में हम भगवान के धाम को अपने आप को पाएंगे। ऐसी प्रार्थना आप सुबह सांगन में करना, क्योंकि ये प्रार्थना का उत्तर आपको यहां मिल सकता है, ऐसी ये पावरफुल जगह है। ठीक है, सिवा सांगन धाम की, गौरांग महाप्रभु की, हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू वेरी मच, हरि बोल।